हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
प्रोग्राम है चैट बस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम आप फेसबुक पर भी देख भी सकते हैं, सुन तो सकते ही हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। फेसबुक के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो जान ही गए होंगे कि कौन है, लेकिन हमारे जो रेडियो के लिसनर हैं वो अभी जानेंगे। जी वारिस, कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम वॉइस ऑफ अमेरिका जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरा सलाम।
बिल्कुल, आपके जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं सब बहुत ही आज खुश होंगे कि आज मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और वो उनसे बराह रास्त सवाल भी कर सकते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो वारिस, जब पहली दफ़ा आपका गीत आया, उससे पहले आपने कितनी स्ट्रगल की? क्योंकि गीत आने के बाद तो मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एकदम इतना सुपर हिट हो गया था आपका वो गीत, तो उससे पहले क्या स्ट्रगल रही?
मैं समझता हूँ जी, कोई भी काम आप करें उसमें स्ट्रगल के बगैर तो होता नहीं है। बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जो लकी होते हैं, लेकिन वो एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं। तो जब आपने स्ट्रगल की होती है तो आप थोड़ी देर उसको रुकते हैं आप। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। आई यूज़ टू स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो वहाँ पे आई यूज़ टू प्ले गिटार। एवरी वीकेंड पे हमारा शो होता था, तो वहाँ गाया करता था। तो वहाँ से मैं PTV पे मुझे एक चांस मिला, एक गाना गाने के लिए मुझे बुलाया गया, क्योंकि हमारे कॉलेज की तरफ से मुझे भेजा उन्होंने। तो उस दौर में गिटार पे मैंने इनको एक दो गाने सुनाए तो बहुत अच्छे लगे। मैं एक प्रोग्राम करने गया था तो मैंने 8-9 प्रोग्राम कर दिए
म्यूज़िक के।
तो उसके बाद डैडी ने कहा जी मेरे के म्यूज़िक का कोई ऐसा स्कोप नहीं है, ये 20 साल पुरानी बात।
सबके डैडी यही कहते हैं।
हाँ जी, लेकिन वो मेरे अंदर से जो थी ना, एक कन्विक्शन थी कि मैं कर सकता हूँ ये। तो बस उसी पर मैं चलता रहा, और अपने आप पर एतमाद था और अपने आप पे भरोसा था, तो आज आपके सामने बैठा हूँ।
तो आपको जब एज अ प्लेबैक सिंगर आप आए, तो पूरे पाकिस्तान ने उस वक्त जब आपकी आवाज़ सुनी तो सब ने ये कहा कि ये बड़ी खुशगवार हैरत के साथ, जो मैं उस वक्त की अगर बात बताऊं तो यही कहा कि ये बहुत ही मुख्तलिफ और खूबसूरत आवाज़ है, और एकदम से मारूफ हो गया। फिर वारिस बेग जो है वो हर तरफ यही होता था। तो तब कैसा लगा आपको और आपके अब्बू को तब कैसा लगा?
पहले वो कहते थे कि ये ना करो, बाद में कहते थे वारिस बेग मेरा बेटा है।
वारिस बेग यही होता है। एग्जैक्टली जब वालदैन को ये होता है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, उस तरह से आपको शायद रिस्पेक्ट नहीं मिलती अगर आप उन दिनों की बात करें।
लेकिन तो एक बात वो सही कहते थे कि आपके पास एक सेकंड कोई काम या जॉब या बिजनेस होना चाहिए। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था,
थोड़ा सा वो फिर सेटिस्फाइड हो गए।
फिर बिजनेस भी चलता रहा, साथ मौसीकी भी चलती रही। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नए आने वाले और जो आना चाहते हैं, इसको फुल टाइम जॉब ना बनाए। खुदा ना खास्ता अगर वो क्लिक नहीं होते या हिट नहीं होते तो उनके पास एक ऐसी चीज़ हो कि वो आगे काम कर सकें। तो कोई भी जितने भी लोग इस फील्ड में आते हैं तो वो सिर्फ म्यूज़िक पे रह जाते हैं, तो फिर वो जब कुछ नहीं बन पाते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है।
अच्छा, तो आपका जो बेटा है वो भी इस इंडस्ट्री में आया है, तो क्या आपने भी अपने बेटे को वही कुछ कहा जो आपके वालिद ने कहा आपसे?
जी बिल्कुल नहीं, काश जितना मैं इसको सपोर्ट करता हूँ मेरे वालिद साहब भी मुझे कर रहे होते।
लेकिन इसके बावजूद आप देखें आपका नाम कहाँ तक पहुँचा है म्यूज़िक में।
मेरा बेटा जी बहुत ही अच्छा सिंगर है, और सईद नूर साहब की फिल्म के उसने डेब्यू किया है अभी।
आपने भी तो वहीं से डेब्यू किया था।
जी, क्योंकि सईद नूर साहब ने कहा कि मैंने आपको लॉन्च किया है तो मैं चाहता हूँ कि अमार को मैं ही करूँ। सो आई जस्ट रैंग हिम अप, ही फ्लू फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान। उसने 4 गाने गाए हैं और बहुत लोगों ने पसंद किया इसको, तो मैं चाहूंगा कि आज आप उसको भी सुनाएं।
बिल्कुल, हम सुनवाएंगे अपने रेडियो के जो लिसनर्स हैं उनको हम जरूर सुनवाएंगे, एक नया गुलकार इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बल्कि आप कह रहे थे कि एक दफा सुने और फिर ढूंढते फिरेंगे कि वो गुलकार कहाँ गया, यानी इतनी अच्छी। तो बल्कि जब मैंने अमार का गाना सुना, ये रेडियो पे इन्होंने लगाया, तो मैंने ये समझा कि वारिस की आवाज़ है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है उनकी आवाज़ भी उतनी ही ज्यादा मारूफ हो जाएगी। तो अच्छा, आपको जब पहली दफा सैयद नूर ने बुलाया, तो PTV के बाद वो पहला चांस था एज अ प्लेबैक सिंगर, तो उसके बाद अपने थोड़ा सा करियर के बारे में बताइए।
मैं बताता हूँ जी, मैं कॉलेज में पढ़ा था उस वक्त, तो आई वॉज वेयरिंग जीन, जैसे मैंने भी पहनी हुई है, मैंने टी शर्ट पहनी हुई। तो पहली बार मैंने अमजद बॉबी साहब को देखा, मुझे ऐसे देखते हैं, कहते आप गाएंगे? मैं कह जी मैं गाऊँगा। तो यूजली जैसे प्लेबैक सिंगर होते थे, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई, पान शान मुँह में डाला होता था, तो मुझे कहते हैं जी अच्छा चले हैं, आपको थोड़ी रिहर्सल करवा दें। तो मैं रिहर्सल करने गया तो ज़मीन पर बैठ के बाजे के साथ, तो एक स्टाइल होता है जो भी हमारे उस्ताद होते हैं वो ऐसे पलटा मारते हैं उसके ऊपर, तो मैं म्यूजिशियन था, मैं गिटार प्ले खुद करता था। मुझे कहते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ, मुझे कहते हैं साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर जिसमें करे सारा जीवन बसर, साथी मेरे हे हे साथी मेरे। मैंने ऐसे देखा, मैं एक बार आप और कहेंगे, फिर जब उन्होंने दोबारा कहा मैंने वो गाना 15 मिनट में गा दिया। तो सैयद नूर साहब एंटर हुए, जैसे आपका स्टूडियो ऐसे एंटर हुए, तो कहते जी आपकी रिहर्सल हो गई है। तो बॉबी साहब ने सैयद नूर को कहा कि उसने गाना गा दिया। कहते यार इतनी जल्दी कैसे गा दिया, उनको सुनाए। जब उन्होंने सुना तो सैयद नूर साहब ने ना बिल्कुल डांस करना शुरू किया, कहते हमें इसी आवाज़ की ज़रूरत थी इंडस्ट्री में, वो मुझे मिल गई, आप हमारे चारों गाने गाए आप।
फिर तो मैंने पहला था जो आपने,
पहला गाना जो मेरा उस फिल्म का था वो था, पहले यही गाया था लेकिन हिट हो गया आप यार दिल में,
आप यार दिल में जगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा सा हमें गुनगुना के सुनाइए ना।
प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, अभी आपको सुनाएंगे इसको।
बिल्कुल। अच्छा तो कैसा बाकी इंडस्ट्री जो थी फिल्म इंडस्ट्री, उससे कैसा रिस्पांस मिला जब सैयद नूर साहब की ये फिल्म आई, रिलीज हुई?
जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवी। और ये भी पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आर्टिस्ट आए पहली फिल्म में चारों गाने गा दे अपने और उसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिल जाए। तो जैसे आपने कहा कि वारिस के गाने हर तरफ थे, तो मुझे लोग कहते थे वारिस बेग वायरस की तरह फैल गया।
बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे ये जुमला याद है, जब आप वो फिल्म जब रिलीज हुई थी तो हर तरफ आपका ये वाला जो गाना है जो कि आपने हमें सुनाया है आप यार,
ये वो गाना था, मेल गाना, वैसे फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनती हैं पाकिस्तान में, तो ये एक मेल गाना था। जब ये मेल गाना शान के ऊपर पिक्चराइज हुआ तो ये गाना 2 बार चलता था हमारे उसके अंदर, सिनेमा के अंदर। तो मैं इसको विटनेस किया खुद भी, जब मैं इसका प्रीमियर हुआ फिल्म का, तो मैं सबसे एंड पे कोने में बैठा हुआ था छुप के, जैसे ना वो मुझे कोई जानते नहीं था तब ना, तो मैं किसी को पता नहीं था ये गाने मैंने गाए हैं। तो इवन ये हुआ कि सादिया जी कि मैं सम टाइम किसी दोस्त के साथ बैठा होता उसकी गाड़ी में, तो मुझे कहते कि यार तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। हमारे पहले एल्बम में होता था कि कुछ गाने हमारे होते थे, कुछ इंडिया के गाने होते थे। कहते यार ये गाना बड़ा अच्छा है इंडिया का, मुझे मेरा दोस्त मेरे ही गाने सुना रहा है। मैंने कहा ये गाना मैंने गाया यार। तो बस तो वो फिर ऐसे बाद में फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया।
बिल्कुल,
सब अल्लाह ताला का करम है जी।
तो अच्छा वारिस, ये बताएं कि मतलब शुरू से ही आपने गुनगुनाया करते थे और सोचा हुआ था, या जीसी में जैसे कि एक ट्रेंड था, कुछ लोग बड़े वहाँ पर ग्रुप्स बने हुए थे, तो ये जीसी की है आपकी पैदावार?
नहीं, ऐसी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जी, आर्टिस्ट इडियट एंड जीनियस आर बॉर्न। ये बहुत
इंटरेस्टिंग बात की आपने।
तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ, जब आपके अंदर वो क्या कहते हैं वो सलाहियत होती है और आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। हर इंसान को ये नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या सलाहियत है, कुछ लोग उसको देख के बताते हैं आज तुम ये कर सकते हो, लेकिन मुझे ये यकीन था कि मैं वही कहा कि मुझे यकीन था अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो यकीन मुझे यहाँ तक ले।
बहुत ज़बरदस्त। तो हम अपने सुनने वालों को जो रेडियो पे हमें सुन रहे हैं उनको बता दें कि हम आपकी कॉल ज़रूर लेंगे, आप बिल्कुल मायूस ना हो। नंबर आप नोट कर लीजिए 08007778789। लेकिन कुछ देर बाद जब तक हम फेसबुक पे हैं तब तक आप हमारी बातें सुनिए और जानिए कि वारिस बेग का ये जो म्यूज़िक का सफ़र है कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुँचा। तो उसके बाद आपकी कॉल ज़रूर लेंगे, आप कॉल कीजिए। लेकिन अभी हम आपकी कॉल इसलिए नहीं ले रहे कि फिर आपको बहुत लंबा होल्ड करना पड़ेगा और फिर आपके बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर आपने मोबाइल से कॉल की। अदरवाइज लैंडलाइन से हमारा नंबर बिल्कुल फ्री है, तो हम आपकी कॉल्स ज़रूर लेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये हमारे रेडियो लिसनर के लिए हम कह रहे हैं और आपको गीत भी सुनवाएंगे जो जो आपके फेवरेट हैं ज़रूर बताइए। वारिस लाइव भी सुनवाएंगे और फिर हम आपको एक नया सिंगर जो है उससे भी मुतारिफ करवाएंगे, जो कि जैसे वारिस ने बताया कि जब पहले दफ़ा रिलीज़ हुए तो ये पीछे बैठे थे कि कोई जानता नहीं था और फिर लोग ढूंढते रह गए कि वारिस मिले और हम उसका इंटरव्यू करें और उससे बातें करें। तो बिल्कुल वही होगा, हम आपको अमार से भी मिलवाएंगे, इनके बेटे हैं। तो कुछ और बताइए, फिर उसके बाद आपका सफ़र कैसा कैसे आगे बढ़ता गया?
फिर मेरी उसके बाद एक फिल्म, एक गाना वो मैंने और गाया, वो मेरी एल्बम का गाना था, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, वो मेरी पहचान बन गया
क्योंकि उसमें वीडियो में भी थे आप।
हाँ, वो पहली बार एक्चुअली मैंने ट्रेंड सेट किया कि मैंने मीरा को इंट्रोड्यूस कराया उसमें, और वो ऑलरेडी फिल्म में आ चुकी थी। फिर एक प्लेबैक सिंगर, जब वो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ तो मैंने वो गाने को खुद परफॉर्म किया और साथ मेरे 20 लड़के थे। तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ें थी जो कभी प्लेबैक सिंगर नज़र ही नहीं आते थे। तो मैं एक्चुअली मैं तो एक बैंड का सिंगर था तो बन गया प्लेबैक सिंगर, तो वो बैंड वाली मेरे में चीज़ें थी। तो उसके बाद कल शब देखा, मेरा जो एल्बम का गाना था वो मैंने सैयद नूर साहब को सुनाया जाके, मुझे ना एक्चुअली फ़ोन आ गया रियाज़ुर्रहमान सागर साहब जिन्होंने ये गाना लिखा है, मुझे कहते हैं वारिस साहब के लिए एक मेरे पास तोहफा है तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं किसी सुनाइए, कहते मैंने सैयद नूर साहब को सुनाया, उन्होंने कहा यार इसको मैं शूट कैसे करूँगा, बहुत लंबी इसकी बहर थी, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। तो वो मैंने कहा जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो कहते मैंने उसको सुनाया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा ये गाना मैं बनाऊंगा। मैं वो गाना लेकर एम अरशद साहब के पास चला गया, एम अरशद साहब को मैंने कहा कि मुझे इसको मेजर स्केल में गाना बना दें। तो ऐसे ही उन्होंने गाना ऐसे सामने रखा है, आप बिलीव करें सादिया, इस गाने ने 38 सेकंड में बनाया हमने ये गाना। वो लगता था जैसे सामने उसकी शायरी रखी हो और गाना ऊपर से उतर रहा है उनके पास। मुझे कहते हैं हे हे हा 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 हे हे ला रा ये करके साथ कहते हैं, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मैंने कहा बस 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 ये बहुत अच्छा बन गया। फिर मैंने कहा इसको ऊपर भी कुछ चेंज करें, उन्होंने फिर ऊपर से जब गाना बनाया तो ये 38 सेकंड में हमने गाना बना लिया।
क्योंकि इस पे गाना सुन के ये लगता ही नहीं कि इसकी बहर अगर इतनी लंबी है तो कितना मतलब मुश्किल से बना, लगता था ऐसे बहुत आसानी से।
तो यही बात है, जब आप कुछ बनाने चाहते हैं तो बनता नहीं है, और जब अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, जब अल्लाह ने आपको मशहूर करना होता ना तो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें आपका साथ देना शुरू कर देती हैं।
बिल्कुल।
तो बस मेरे पे अल्लाह का करम हो गया। और ये एक बात है कि जब अल्लाह ताला ने किसी को मशहूर करना है तो लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल देते हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
टैलेंट का होना भी बहुत जरूरी है, हमारे
टैलेंट का होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो सामने आए नहीं, किस्मत का इसमें बहुत ज्यादा हाथ है। मैं फिर भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा करम है कि लोगों के दिलों में प्यार जो है मेरे लिए आज भी जिंदा है, और अल्लाह ऐसे ही जिंदा रखे।
चला, हमारी भी दुआ है इसके लिए। अच्छा, तो वारिस साहब का एक एल्बम भी आया था शायद शुरू में, अगर मैं गलत नहीं कह रही, म्यूजिक 89 के नाम से कोई एल्बम आया था शायद।
एक मेरी एल्बम थी मेरी,
वो मैंने खरीदा था असल में, इसलिए मुझे याद है।
अच्छा, आप मेरी इतनी पुरानी
लिस्टर है। बिल्कुल।
अच्छा, तो वो भी, हाँ जी, वो मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे कराची से सोनिक वालों ने मुझे उसके लिए कहा कि आप हमारे लिए कुछ एल्बम बना दें, तो फिर मैंने वो एल्बम किया उनके लिए। हाँ जी, माशाल्लाह आपको काफी
मुझे याद है, इसलिए कि उस वक्त इतने कम इतने खूबसूरत गाने हुआ करते थे, तो ये बहुत ही, एक तो आवाज में रिधम और फिर म्यूजिक इतना खूबसूरत था, तो बहुत ही ज्यादा सुपरहिट ये गीत थे, तो ये मुझे एल्बम इसलिए याद
था। वही एल्बम लेके मैंने अपना अमजद बॉबी साहब को दी, क्योंकि वो मैं उनसे मिला नहीं हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, वो एल्बम उन्होंने उनको भेजी, तो उन्होंने कहा जी ये बंदा गा सकता है फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म का गाना एक बड़ा गाना होता है, उसके लिए फिर आपको आवाज़ भी वैसी चाहिए होती है और उसके लिए सिचुएशन चाहिए होती है, तो उन्होंने फिर इसलिए मुझे ओके कर दिया।
तो इसके बाद फिर आप कहाँ कहाँ गए, बाहर के मुल्कों में भी गए, और फिर दरमियान में अगर मैं गलत नहीं कह रही तो मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा जो है वो आप नहीं आए सामने।
मैं जी आई एम रिप्रेजेंटिंग लेटविया एंड पाकिस्तान, मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ लेटविया का, मैं अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करता रहता हूँ।
जबरदस्त।
तो गाने तो जैसे आज भी मैं, कल मेरा शो है इधर बुलरन पार्क में, यूएसए में, तो अपने मुल्क के लिए मुझे जब भी कोई मेरे मुल्क बुलाता है तो मैं ज़रूर आता हूँ जी उसके लिए।
बहुत ज़बरदस्त।
तो फिर कभी, जाहिर बात है, आप म्यूज़िक जो है ना ये दो चार तो नहीं है, आप जब उसमें कुछ बनाएंगे तो फिर अच्छा बनाऊंगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको एक मेरा नया गाना है इश्क वो आपको सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा वारिस, एक और सवाल फेसबुक के जो हमारे लिसनर हैं उनके लिए, तो बस अब आखिर आखिर की ये बात है, फिर हम अपने रेडियो के जो लिसनर हैं सारे उनसे बात करेंगे। तो ये बता दीजिए, काफ़ी सिंगर जो है वो सियासत की तरफ आ रहे हैं, तो सोचा आपने कि अपनी शोहरत जो है उसको कैश करवाया जाए, या फिर ये कि कोई मुल्क को संवारने की ख्वाहिश हो कि मैं सियासत में आके ये काम कर सकता हूँ?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सियासत के बगैर भी कुछ काफ़ी कुछ कर सकते हो। सियासत में मैं कभी भी नहीं आना चाहूँगा, मैं आया भी नहीं हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, सभी जितने भी PMN के जो लोग हैं, PTI में जो लोग हैं, और काफ लीग के सारे मेरे दोस्त हैं। और
जब आपने अपनी पार्टी बनाई,
हाँ जी, लेकिन आप ये नहीं है कि आप कोई पार्टी बनाएं या कोई हॉस्पिटल बना के, आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, खुला काम करें वो ज़्यादा अच्छा है, किसी सबके साथ काम करें। हाँ जी
जी, बहुत शुक्रिया हमारे फेसबुक के लिसनर और व्यूअर्स का कि उन्होंने हमें देखा। बहुत माजरत चाहती हूँ कि हम आपके जो सवालात हैं वो साथ साथ नहीं ले सके, लेकिन फेसबुक के हमारे जिन दोस्तों ने कोई सवाल वारिस बेग से पूछा है या कुछ भी क्वेश्चन किया है, हम ज़रूर प्रोग्राम के दौरान उसको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अब हम आपको मज़ीद कुछ बातें करेंगे, लेकिन रेडियो के लिसनर्स के लिए, फेसबुक के लिसनर्स से हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। जी सो वारिस, अभी हम फिर आपको अपने जो लिसनर्स हैं उनसे वादा किया था, उनको एक गीत सुनवाते हैं और फिर उनकी कॉल्स लेंगे और देखते हैं कि, बल्कि अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि वारिस हैं स्टूडियो में मौजूद। तो चलते हैं आपके गीत की तरफ और फिर आएंगे और अमार और आपसे बातें करेंगे।
देखा मैंने चांद रोके ने, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके ने। कल शब देखा मैंने चांद रोके ने, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके ने। सलाम तुम्हारे धोखे में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हो कल जब देखा मैंने चांद रोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मस्त हवा में शामिल थी, धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरने कहीं घटा के झोंके में।
जबरदस्त, ये जो दो आवाजें आप सुन रहे थे जिसको आपने एक ही समझा है मेरी तरह, ये बिल्कुल अम्मार वारिस की आवाज थी। तो अम्मार आपको वेलकम करते हैं अपने शो में, और मैं वारिस की बात को बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ और मैं लकी समझ रही हूँ कि एक ऐसा गुलुकार जो बहुत ही मारूफ होने वाला है अपने विरासत को जिंदा रखते हुए, वो बहुत ही जल्द मारूफ होने वाला है। तो मैं फिर ये कहूँगी कि मैंने अमार का सबसे पहले VOA में इंटरव्यू किया था, तो वेलकम करते हैं आप। और
मैं समझता हूँ अमार लकी है, जैसे आप मुझे सुनती रही हैं इतनी पुरानी, आपने मुझे एल्बम के बारे में बताया कि आपकी जो गुट्टी मैंने लक जरूर होगी, तो अमार भी
बिल्कुल। तो
मैं लकी फील करूँ। आई बीन इन दिस कंट्री फॉर 6 years ऑलमोस्ट एंड दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू इन USA, so big thing for me.
अच्छा, तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे अमार?
जी जी।
तो अमार सीखा कहीं से या फिर अपने डैडी बाबा कहते हो, क्या कहते हो?
पापा।
पापा, तो अपने पापा को देख देख के और सुन सुन के आप भी इंस्पायर हुए और गाना
शुरू कर दिया? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसके पापा हैं और शुरू दिन से ही उनकी गाइडेंस, गाना किस तरह गाना है, तलफ्फुज, एक्सप्रेशंस, सो घर में ही मेरे पास टीचर थे।
जबरदस्त। अच्छा, तो वापस जाना है क्या?
He plays guitar very well.
जबरदस्त। आज वैसे आप मिस मैंने कर दिया है, आप ले आते गिटार यहाँ स्टूडियो में?
स्टूडियो ही करते
हैं। लेकिन हमारा है वैसे एक इधर है, लेकिन अपना नहीं होगा। हाँ, अमर थोड़ा सा फोन आगे वो कर लीजिए अपना, ये माइक्रोफोन।
जी
तो जी बिल्कुल। अच्छा, तो बताइए फिर वापस जाने का इरादा है या वैसे तो जो लोग आते हैं वो फिर यहीं सेटल हो जाते हैं?
नहीं बिल्कुल जी, मेरा वापस जाने का पूरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह ताला।
आई लव
पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। इधर एजुकेशन के लिए आया था, वो पूरी हो गई।
पूरी हो गई तो बस अब जा रहे हैं। तो क्या सोचा है? जैसे अभी मुझे वारिस ने भी बताया कि एक साइड पे जरूर ऐसा काम होना चाहिए जो म्यूजिक के अलावा भी हो, तो कुछ सोचा है कि क्या जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे?
बिजनेस पापा का है,
तो वही ज्वाइन करेगा
वो साथ साथ। उसके साथ मेरा गोल है कि मैंने वापस जाते इंशाल्लाह क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, शुरू करेंगे और वर्क माय वे अप।
बहुत अच्छी बात है। और अब तो इंडस्ट्री बहुत फैल गई है, यानी उस तरह से अब मौके उस वक्त तो कम ही मिलते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। टैलेंट है और लक है आपकी, तो जबरदस्त।
बस ये वही बात है जैसे आप कह रही थी कि टैलेंट भी होता है, लोग खूबसूरत भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें लक नहीं होती,
उसमें लक नहीं होती, तो वो उस तरह क्लिक नहीं कर पाते।
हाँ जी, तो लक होना जरूरी है और साथ अपने आप पे एतबार होना जरूरी है कि ये मैं कर सकता हूँ।
हाँ जी। तो हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, वारिस पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो गांव हैं, शायद आपने बाज़ दफ़ा किसी का नाम तक ना सुना हुआ, मेरे साथ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। अच्छा। तो वो लोग हमारे साथ हैं, खुदा नज़र हैं हमारे साथ शहदादपुर से। अस्सलाम वालेकुम खुदा नज़र, क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे गेस्ट से?
मैं ये पूछना चाहता हूँ बाजी, कितने जबानों में गाते हैं?
कितनी जबानों में गाते हैं? थैंक यू सो मच जी। वारिस,
मैं जी एक ही जुबान में, पंजाबी और उर्दू दो जबानों में, इंग्लिश में भी गाता हूँ, तीन जबानों में गा सकता हूँ जी। लेकिन मैंने जहाँ पे कुछ हमारी एम्बेसीज ऐसी हैं जहाँ पे मैंने शोज़ किए हैं जापान में और बर्मा में, मैंने उनकी आवाज़ में भी गाया। सिंगर तो किसी जुबान में भी गा सकता है।
पिछली दफ़ा हमारे साथ एक सिंगर थे तो मैंने उनसे पूछा कि मुश्किल नहीं लगता, वो कहते हैं नहीं, वो तो म्यूज़िक की जुबान समझता है सिंगर। हाँ,
वही ना।
तो उसके साथ साथ
तो मैं अगर आप समझे तो मैं हर जुबान में गा सकता हूँ।
हर जुबान में गा सकते हैं
तो, क्योंकि वो हमें वो उसको रोमन में लिख लेते हैं
और गा लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, तो हमार बताओ पापा के अलावा और कौन सा सिंगर आपका पसंदीदा है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो पापा तो मेरे बिल्कुल फेवरेट हैं।
फेवरेट है?
और मैंने बहुत सुना है पापा को, मगर उनके अलावा नुसरत फतेह अली खान साहब।
अच्छा।
मुझे सजाद अली बहुत पसंद है, राहत फतेह अली खान बहुत पसंद है।
जबरदस्त।
तो सारे क्लासिकल सिंगर्स बड़े शौक से सुनता हूँ उनको मैं। यप,
बहुत अच्छी बात है। कुछ और कॉलर्स हैं, मोहम्मद आजम खुशाब से अभी हमारे साथ हैं अंजुम या फिर गए? हमारे साथ हैं जी। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब आप सवाल कीजिए। वारिस बेग हमारे साथ हैं, उनके बेटे और पाकिस्तान के उभरते हुए गुलकार।
आपने जी, सबसे पहले तो मैं अपने आए मेहमानों को, बाप बेटे दोनों को खुश आमदेद कर दूँ, बहुत खुशी हो रही है।
बहुत
और आपकी पूरी टीम को सलाम करता हूँ, बड़े शौक से प्रोग्राम सुनता हूँ।
बहुत शुक्रिया।
और सबसे बड़ी खुशी जो आज हमें है वो हमारे लीडर मोहतरम जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को सलाम पेश करता हूँ।
बिल्कुल जी, तब्दीली का साल है तो दिल्ली आ गई है।
और अभी आपने
जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बल्कि व्याहड़ी से हमारे साथ एक कॉलर हैं, अल्लादिता शाकिर। अस्सलाम वालेकुम अल्लादिता साहब।
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, किस लिए व्याहड़ी से आर्ज़ कर रहा हूँ
जी? अर्ज कीजिए।
तो मैं आपके मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो सैयद नूर साहब की बात हो रही थी, तो उनकी फिल्म आज भी हमें याद है जो चूड़ियाँ उन्होंने शेरगढ़ उकाड़ा में अपने आबाई इलाके में
بنائی تھی جی بالکل
right.
تو بالکل ہاں جی مہبر رانا اور وہ بڑی مشہور اور ہٹ ہوئی تھی اس وقت سینمو کا ایک دور ہوا کرتا
ہاں جی, ہاں جی, بالکل جی.
اور ان کے میں بیٹوں کو بھی سلام کرتا ہوں. نصرت فتح علی خان صاحب کی بات چلی کل ان کی برسی تھی
جی.
اور آج تسلیم فاضلی آج ان کی برسی ہے جو معروف شاعر ہیں
جی جی.
تو ان کے حوالے سے ان کی بھی یاد ضرور آپ تازہ کرنا. آج ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی سالگرہ ہے اور کل کو
کیا بات ہے, آپ نے تو اتنے ہمیں کام کرنے کو دے دیے.
آپ کو تو بہت خوشی آ رہی ہے
جی. حافظ سراج ہیں ہمارے ساتھ اس وقت, السلام علیکم. آپ ریڈیو بند کر دیجیے نا.
السلام
جی, سوال کیجیے
جی. بند کر دیجیے
جی, آپ بولیے.
اچھا فاضل بہن کیا حال ہے؟
بالکل ٹھیک.
اچھا وارث بیگ صاحب سے دو سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ مطلب وہ جو آپ نے گانا گایا تھا نا میرے دل میں,
ہاں جی,
تو وہ جو آپ کے ساتھ وہ راج نہیں کرتا ہے نا, وہ کون ہے؟
وہ جی خان صاحب تھے, اپنا ان کا میں نام بھول گیا ہوں, لیکن بالکل نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں جی بالکل بالکل وہی تھے جی. ہاں
اور دوسرا سوال, لائن ڈراپ ہو گیا حافظ صاحب, آپ کا دوسرا سوال تو رہ ہی گیا. زبیدہ چانڈیوں ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم زبیدہ.
السلام علیکم, کیسی ہیں میڈم آپ؟
میں بالکل ٹھیک ہوں,
اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہو؟
میں بالکل صحیح. آپ شو سن رہی ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا.
انٹرویو میں سنا, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے, ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھا سنگر آپ کی شو میں ہے.
کیا بات ہے, تو سوال کیجیے کوئی وارث سے.
ادوار سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کی موسیقی اور کل کی موسیقی میں کیا فرق تھا؟
زبردست, گڈ کوسچن.
اس کا میں جواب لیڈیز کا ہی طرح ہی دوں گا. جیسے آپ, یہ ایکچولی ٹرینڈ ہوتا ہے, جیسے آج کل آپ لیڈیز لمبی قمیضیں پہنتی ہیں, کبھی چھوٹی پہنتی ہیں, تو میوزک کا بھی ٹرینڈ ہوتا ہے جی.
اپنا
اپنا ہر پانچ سال کے بعد, چھ سال کے بعد میوزک ریوائو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دور میں بالکل کلاسیکل لوگ سننا نہیں چاہتے تھے جب میرے گانے آئے. اس کے بعد پھر ایک بالکل فیسٹ دور آ گیا, بالکل اس میں آپ کو سارے بینڈس کے گانے آ گئے. پھر اس کے بعد ابھی اپنا سافٹ میوزک آ گیا, اب دیکھیں پھر کلاسیکل آ گیا. تو یہ ٹرینڈ چلتا ہے, انڈیا ہو پاکستان ہو, یہ ایک ٹرینڈ چلتا رہتا ہے میوزک کا. اب جیسے دیکھ لیں آپ پرانے ہمارے مائیکل جیکسن کا ایک دور میں ایک ٹرینڈ تھا, اب ماریا کرے آ گئی ہیں, یہ ٹرینڈ چلتا رہتا ہے.
ٹرینڈ چلتا رہتا ہے صحیح. اچھا ہماری ایک لسنر ہیں فیصل آباد سے, ہمیں بڑی ریگولر انہوں نے مجھے ابھی میسج کیا ہے, نجمہ نوشاہی نے, تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا موسیقی سے آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں, کیا پازیٹیو چینج؟
بالکل کر سکتے ہیں جی, آپ انسانیت کی کر سکتے ہیں, آپ اسلام کی کر سکتے ہیں, آپ موسیقی سے آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو, بیمار لوگوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی سوئسائڈ کرنا چاہتا ہے, اس کے کان میں اچھا گانا چلا جائے تو اس کا مائنڈ چینج ہو جائے گا. تو میں نے جی, میں زی ٹی وی کا ایک ہی چینل ہے انڈیا میں, زی سلام, اس کا میں برانڈ امبیسڈر ہوں. میں نے حمد و نعت ان کے لیے وہاں پڑھی ہیں, میں نے حمد و نعت کو فیوژن کیا ہے.
اچھا,
جیسے ہمارے ہماری آیات ہیں, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دکھ درد کے ماروں کو تیرے نام سے تسکین, میں بھی کہوں آمین تم بھی کہو آمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے اس طرح کے فیوژن کیا کہ جو لوگوں کو ہمارے اسلام کے بارے میں نہیں پتا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس کو میں نے نعت اور حمد میں ڈال دیا.
زبردست. تو ایک کوئی گیت سنتے ہیں آپ کا, ہمارے لسنر کب سے انتظار میں ہے, تو آپ کا ایک بڑا ہی اور معروف جو ٹریک ہے وہ سنواتے ہیں. آپ پیار دل میں
ضرور سنائیے.
تو بالکل چلتے ہیں, انجم سنائیے ہمیں زبردست گیت.
قسم میری جانا آگے मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया। हाँ वीरा मेरी जिंदगी में ये दिन भी देखो है आया। खुशबू ही खुशबू है उसकी दिल में नशा सा है जाया।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया असद, मेरे साथ हैं वारिस बेग और उनके बेटे बल्कि उभरते हुए गुलुकार कहेंगे हम, ताकि और ज्यादा आपको गुड लक मिले।
ये एक्चुअली उभर चुका है, इसने चार गाने गाए।
अमार बेग कहते हो या अमार वारिस कहते हो?
अमार बेग।
अमार बेग, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले कि हम और मैं ये बता दूं कि जो अब आप नेक्स्ट हमारा गीत सुनेंगे वो अमार ही का होगा, तो अमार जब आपका गीत सुनाएंगे तो हमें कुछ लाइव म्यूजिक भी आप गिटार तो आप लाए नहीं है तो सुनवाइएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कल भारत के एक बड़े सियासतदान और तीन बार वज़ीर आज़म रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी वो कल चल बसे। तो हमारे लिसनर चूंकि भारत में मौजूद हैं तो उन्होंने बड़े पैगाम भेजे और लिखे कि भारत पूरा बहुत उदास है क्योंकि उनकी रेपो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत चाहा जाता था उन्हें,
बहुत अच्छे इंसान थे।
तो बारिश कुछ आप बताइए।
मैं समझता हूँ कि वो शायर थे, उनका दिल भी नरम था और बड़ी यकजहती की बात करते थे, इसलिए हमारे जो प्रेसिडेंट थे अपना मुशर्रफ साहब वो भी गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी वहाँ पे गए, दो हमारे मुल्क के जो मेन लोग थे वहाँ पे गए। तो मैं समझता हूँ जो जितने भी शायर होते हैं, हाँ जी खुद भी लाहौर आए थे, जी बिल्कुल,
बिल्कुल।
ये खुद आए थे लाहौर में, वो बस लेके आए थे,
बस लेके आए थे। हाँ, बड़ी मुखालफत भारत में बाज हल्के जो हैं वहाँ मुखालफत भी की गई कि आप मतलब
देखो ना, जो सॉफ्ट दिल रखता है तो वो चाहता है कि ये दूरियां खत्म हो।
जो काफी सारे जो क्रिटिक्स हैं उर्दू के, उन्होंने उनके बारे में यही लिखा है कि चूंकि वो बेसिकली तो एक शायर थे, अदीब थे, तो उनका दिल जो बात आपने कही बहुत सॉफ्ट था, तो उनकी जो सियासत है उसमें भी वो नजर आता है, वो जम हो गई उनकी वो शख्सियत थी।
सादिया एक बात कहूँ, मैं इंडिया में जब रिकॉर्डिंग कर रहा था अपनी हमदो नात की, मैंने ताजमहल में रिकॉर्ड की और मैंने वहाँ पे 10-12 मेरी हमदो नात रिकॉर्ड हुई कुतुब मीनार में, बलागर लूला भी कमाली मैंने वहाँ पढ़ी। तो ये जितनी भी टेंशन है ना, जितने भी आज मुझे भारतीय लोग सुन रहे हैं, कश्मीर में सुना जा रहा है मुझे, ये टेंशन ऊपर ऊपर है, नीचे इतनी मोहब्बत है, सियासत में है, अपनी सियासत चमकाने के लिए सब ये कर रहे होते हैं। तो जब नीचे जो लोग हैं वो इतना प्यार करते हैं आपसे, कोई आप किसी को कहे मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो आपको इतनी वो अच्छी फीलिंग देते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, जैसे इंडिया का कोई बंदा पाकिस्तान आए तो उसको लगता नहीं है, वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल
एक ही जैसा,
एक ही जैसा।
बल्कि आपको मजे की बात बताती हूँ, खुशवंत सिंह जी आए, उनसे भी पूछा गया तो वो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं पाकिस्तान में था कि भारत में था।
आज अभी मेरी बात हुई है क्रिकेटर से, हमारा अपना सिद्धू जी से, वो पाकिस्तान है, उन्होंने मुझसे बात की है। अभी जब मैं गाड़ी में था यहाँ पे आ रहे थे तो मेरी उनसे बात हुई, कहते पाजी आप वहाँ चले गए, मैं पाजी आपको वेलकम, आप पाकिस्तान हो लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। जो मेरा यहाँ
वाजपेयी साहब के लाहौर दौरे की बात हो रही थी तो मैं पढ़ रही थी तो लिखा हुआ था कि कहा गया था कि वाजपेयी साहब आएंगे तो मीनारे पाकिस्तान पर भी जाएंगे, तो भारत के बाज हल्कों ने कहा कि नहीं, अगर आप मीनारे पाकिस्तान पे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के बनने पे मोहर लगाएंगे। तो वाजपेयी साहब ने कहा भाई मोहर क्या लगाऊंगा, बन चुका है वो तो। तो यही जो चीज है हम आंगी मोहब्बत रवादारी,
मेरी यही दुआ है जी इंडिया में वाजपेयी जैसे ही लोग आए और जो या कम से कम उनके नक्शे कदम पे चले, जो मोहब्बत को बांटे,
मोहब्बत को बांटे। बल्कि उनकी एक बड़ी ही अच्छी नज्म थी, वो पूरी तो इस वक्त मैं नहीं पढ़ूंगी लेकिन वो हिस्सा जरूर पढ़ूंगी जिसका उन्होंने बात की कि हम जंग ना होने देंगे।
माशाल्लाह,
बिल्कुल। तो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। कितनी बड़ी बात,
क्या
है?
बात, क्या बात,
कुछ भी करें दोनों ही को सहना है।
तीन बार लड़ चुके,
तीन बार लड़ चुके, लड़ाई कितना महंगा सौदा,
वाह,
रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक बहना है,
क्या बात,
जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। मतलब अब ये देखें, उन्होंने ये बात उस वक्त की थी, यानी उनकी शायरी में जब वो आए थे सियासत में तो बहुत से लोग नहीं जानते थे कि ये शायर हैं, और बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मैं पढ़ रही थी कि लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं तुकबंदी करते होंगे, जब ये सामने आना कि शायर भी हैं, नहीं तुकबंदी करते होंगे, फिर बड़ी इनकी शायरी पे लोग जो है उन्होंने तबसरे किए और जब देखा तो वाकई मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त शायर थे, बुक्स हैं उनकी।
सादिया एक बड़ी अच्छी बात हुई कि एक तो शायर वहाँ पर आ गए तो उन्होंने ऐसी बात की कि हम जंग ना होने देंगे,
बिल्कुल,
अब हमारे पास एक खिलाड़ी आ गए हैं। तो आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंडिया में उनके हक में लोग हैं
बोल रहे हैं
अभी सिद्धू जी आए हैं और भी जितने भी दुनिया से लोग आए
मैसेजेस दिए हैं
तो ये मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियन है उसको पीछे रख के अगर सोचें पाकिस्तान और इंडिया, तो हम अगर एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रेड में कर लें, आप मौसीकी में कर लें, कुछ हम जॉइंट वेंचर्स करें, तो मैं समझता हूँ ये ऐसे मिलना चाहिए,
ऐसे मिलना चाहिए बिल्कुल। और बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, तो मैं बता दी चुनो कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, कि जो अज़दवाजी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं या मसाइल होंगे, जो तलखियाँ होंगी, तलखियाँ ना भी हों, बाज़ लोग बड़ा खुश रहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर, तो वो शायद मेरे जो मुल्क की खिदमत है जो मैं करना चाहता हूँ उसकी राह में रुकावट ना हो जाए, तो उन्होंने कभी शादी नहीं की, यानी इतना डेडिकेटेड तो अंजुम चलते हैं अम्मार के गीत की तरफ और सुनते हैं कि
इसको कंपोज भी मैंने किया जी।
अच्छा, इस गीत को?
हाँ जी,
बहुत जबरदस्त, और उन्होंने इसमें कुछ नया सुन रही थी, बहुत जबरदस्त,
न्यू जनरेशन के लिए
तो आइए सुनते हैं।
यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा, जज्बात पे दिन रात पे छाने लगा, हर पल कहे don't go away।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स, हमारे साथ हैं वारिस बेग और अमार बेग,
और अमार कह रहे हैं डोंट गो अवे,
डोंट गो अवे, तो बिल्कुल सुनते रहिए और जरूर कॉल करके बताइए 08007778789 पर कि आपको अमार की आवाज कैसी लगी। तो अमार, अच्छा कुछ बताइए, ये गीत आपके पापा कह रहे हैं कि इन्होंने कंपोज किया है, इसके अलावा अब मजीद म्यूजिक में आप कहाँ देखते हैं खुद को?
स्काइज द लिमिट, मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला वापस जाते ही पाकिस्तान, मैं और सीखना चाहता हूँ म्यूजिक को, ये तो ऐसा समुंदर है जिसको आप
बिल्कुल
जितना डीप जाएंगे उतने ही आप जाते रहेंगे।
अभी इसने छलांग लगा दी है
और मुझे इसकी बातों में इतनी मैच्योरिटी नजर आ रही है कि उसने वाकई सोचा हुआ है कि मैं बाकायदा सीख के, वो इसको लाइट नहीं ले रहा कि ठीक है भाई मेरे बाप का एक नाम है और मेरा भी उनकी वजह से नाम हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो मुझे आता है बस ठीक है। तो बच्चा बहुत संजीदा और बहुत मैच्योर है और इंशाल्लाह
रंजीदा भी
नहीं, रंजीदा ना रहा करे ना, आपको भी शोहरत मिल जाएगी इतनी ही।
मुझे म्यूजिक के लिए करना चाहता हूँ कुछ,
जबरदस्त
पापा की गाइडेंस है, इवन कि जब पापा ने भी शुरू किया था इन्होंने भी क्लासिकल ट्रेनिंग ली थी, तो और माशाल्लाह आज इतने अच्छे मुकाम पे हैं।
और तरबियत या ट्रेनिंग आपने जिस भी काम के लिए ली हो वो जरूर नजर आती है आपके काम में, चलती है।
बिल्कुल ऐसे ही।
बल्कि वारिस, जब आप जाते हैं क्लास में, अगर आपने डॉक्टरेट भी की है और आप पहली की क्लास में जा रहे हैं, तो कहते हैं कि अपना लेक्चर एक दफा जरूर देख के जाएं कि बच्चे भी आपको हार्ड टाइम दे सकते हैं। तो यानी आप कभी भी अपने आप को ये मत समझें कि आप मुकम्मल हो गए हैं, आप मास्टर हो गए हैं। तो जबरदस्त यही सोच होनी चाहिए।
मैं चाहूंगा किसी दिन आपके पास गिटार लाए, ये एक मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है, खान साहब का सुन चरखे दी मिठी मिठी,
बहुत अच्छा है।
तो अगर ये सुनाए लाइव तो,
और बल्कि देखिए ना अभी उन्होंने बताया कि उनकी बरसी भी थी, तो हमारी ये है यहाँ पर रिवाइट।
बिल्कुल, मैं बिल्कुल जी नुसरत अली खान साहब, मेरे मेरे पापा के बाद जो आइडल है मैं उनको बहुत सुना है, तो मैं उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट देता हूँ और जितने भी उनके फैन सुन रहे हैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ।
जबरदस्त।
सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कू।
जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और बल्कि ये हमारे उन लिसनर के नाम भी है जिन्होंने कॉल की थी और कहा था कि आप उनके ट्रिब्यूट में, उनके एजाज़ में, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के एजाज़ में आप कुछ चलाएं, तो वो भी खुश हो गए होंगे। अच्छा, तो इसके अलावा हमने जब अभी इंतखाबात का मरहला शुरू नहीं हुआ था तो हमने एक शो किया था, तो यंग जनरेशन को हमने दावत दी थी कि वो बताएं कि वो किस लिए वोट देने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आप कितना समझते हैं कि जो आपका लीडर है, जैसे आज 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं इमरान खान, अपनी 22-23 साल जो जिद्दोजहद है इनकी इस मैदान में, उसके बाद सामने आए हैं, तो एक तो ये बताइए कि क्या होप है आपकी कि वो वाकई जिस तब्दीली का नारा लगाते आए हैं इतने सालों में वो ला पाएंगे, इतना आसान है क्या? और ये कि आप क्या कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को?
आई थिंक इतना आसान नहीं है जितनी पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक होनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट होप है चेंज इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा। और इमरान खान यूथ के लीडर हैं, आई एम अ बिग फैन, ना उसके खाली पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से नहीं, उनके वैसे भी पीछे से आई लव क्रिकेट यू नो, तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल, अभी जैसे आप वारिस आपकी तरफ आना चाह रही थी कि आप भी बताइए कि आप क्या आप देख रहे हैं।
एक तो स्टेटस को ख़त्म हुआ है जो 10 साल से, जो 30 साल से था,
डायनेस्टिक
पॉलिटिक्स थी वो ख़त्म हुई है, एक नया चेहरा सामने आया है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जैसे अमार ने कहा, लेकिन उन चैलेंजेस पे वो काबू कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसको प्रूव किया कि एक जैसे हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, तो पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज हमारे लोग हैं उनको उन्होंने आवाज़ दी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भेजा। तो मैं अब भी बिलीव करता हूँ जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी 70-80 लाख जो लोग हैं, तो वो अगर $5 भी भेजें तो कितने लाख अरब डॉलर बन सकते हैं। तो इमरान खान साहब ज़रूर अपील करेंगे उनको, जो मैं समझता हूँ वो इसलिए पैसा भेजेंगे वहाँ पे कि उनको यकीन है इमरान खान पे, एक क्वालिटी कम अज़ कम है कि उनको पैसे से प्यार नहीं है, क्रेडिबिलिटी है, तो वो पैसा खाएंगे नहीं, गरीब लोगों के पैसे वहाँ उन तक उनका पहुँचाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो एक चेंज आई है जिस पर लोग बिलीव कर रहे हैं और लोग उस पर ट्रस्ट भी करेंगे।
अमार, मैं एक बार फिर कहूँगी कि बड़ी मेच्योरिटी है उसकी थॉट्स में, उसके सोच में, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा है कि तब्दीली इस तरह से नहीं आती जादू की तरह कि आपने बटन दबाया और तब्दीली आ गई। तो उसके लिए जो आपके इतने पुराने मसाइल हैं उनको हल करना वो वक्त,
देखिए 70 साल से वैसे ही चल रहा ना, वैसे ही स्टेटस को ख़त्म किया जो 70 साल से, मैंने जैसे कहा कि डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स थी वो ख़त्म की उन्होंने, तो उसके लिए ये ना सोचे कि 6 महीने में 70 साल के जो
90 दिन
में काम उसके पीछे जाएं, तो उसको थोड़ा सा चांस तो देना, 2-4-5 साल दें कि उन्होंने 5 सालों में क्या किया, तो फिर मेरे ख्याल से
एक्चुअली हमारे लोग उनको आते हुए भी 22 साल लगे, वो भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली
उनको, कम से कम 220 दिन तो देके देखें कि 220 दिनों में क्या करते हैं।
बहुत ज़बरदस्त जी, कॉलर्स ले लेते हैं, चलते हैं खालिद उमर नियाजी की तरफ, मियांवाली से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सिस्टर जी, कैसे हैं आपको और आपके जो मेहमान हैं देख साहब, उनके बेटे को बहुत बहुत वेलकम और सलाम करता हूँ। بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کا شو اور بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو ان سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے کراچی میں بھی کوئی گانا گایا ہے یا کوئی گانے کا ارادہ ہے؟
کراچی میں میں نے
عمران خان آیا ہے, بڑی توقعات ہیں عوام کو, تو ان شاء اللہ یہ جو لوگ
میاوالی کے ہیں نا جی,
تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی ایسا جناب فنکشن کریں, کوئی فنڈ اکٹھے کریں اور حکومت کی اور ڈیمو کے متعلق اکٹھا کر کے نا جی وہ حکومت کا ہاتھ بٹائیں.
آپ کو بھی ٹارگٹ دے رہے ہیں؟
بالکل ایسی ہے جی, میں بلکہ جتنے پاکستانی ہیں ہمارے, میں ان سے میں خود بھی کر رہا ہوں, ان سے اپیل کروں گا کہ 22 کروڑ لوگ ہیں, اگر 10 روپے بھی دیں تو 220 کروڑ بن جائیں گے. تو 10 روپے تو ہر بندہ دے سکتا ہے.
اس بات سے مجھے یاد آیا کہ جب نواز شریف بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملاؤ اور ہم یہ قرضہ جو ہے وہ ختم کریں, تو تب بھی لوگوں نے بڑے پیمانے پر
جو قرض اتارو ملک سنوارو, جب میاں صاحب نے وہ نعرہ لگایا تھا وہ گانا بھی میں نے گایا تھا. تو آج بھی
بہت مجھے یاد ہے, بہت پیسہ لوگوں نے دیا تھا اور پاکستان کا ویسے بھی شمار بہت زیادہ سخاوت کرنے والے اور پیسے دینے والے. آپ ادھی صاحب کی مثال لے لیجیے, ان میں شمار ہوتا ہے.
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنی ہماری عوام جو ہے جتنی زیادہ ایموشنل اپنے ملک کے لیے ہے, اب دیکھیں ہمارے ملک میں کتنی آفتیں آئی ہیں, کتنی زیادہ ٹیررزم ہے, کتنی زیادہ وہاں پہ
ایک ساتھ کھڑے,
ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں ایک دم سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ملک ہے, ان کے جذبات کو اچھی طرح یوز کریں, نہ کہ ان کے جذباتوں کو آپ خراب کریں.
بالکل. اور اس کے لیے جیسے ایک تعلیم یافتہ نوجوان میں جو پاکستان کا اب دیکھ رہی ہوں, اس کی سوچ بہت ہی ریئلسٹک ہے.
That's right.
مطلب وہ خوابوں پہ نہیں جیتا یا پھر یہ کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا, وہ محنت کرنا جانتا ہے. تو اس کے لیے ضروری تعلیم ہے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ عام کریں پاکستان میں, تو ہر نوجوان جو ہے اس کے اندر پھر یہ ہو سکتی ہے اہلیت کہ وہ آپ کا وزیر اعظم ہو. مطلب ایک عام بندہ بھی کہیں سے اٹھ کے آپ کا وزیر اعظم بن جائے. بالکل. تو ہمارے ساتھ نور بخش نے ہمیں تربت سے کال کی تھی لیکن بدقسمتی سے ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اب پھر کوشش کیجئے نور بخش صاحب, ضرور آپ سے بات کروائیں گے ہم وارث بیگ اور عمار بیگ کی. تو ایاز ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم ایاز. ہیلو.
جی السلام علیکم.
بالکل ٹھیک.
ہیلو جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم ایاز, کیسے ہیں
آپ؟ آ رہی
ہیں. بالکل بولیے.
جی میں وارث صاحب بالکل ٹھیک ہوں. آپ کے بیٹے عمار کا بھی گانا سنا, ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں ہونے ہار بروا کے جتنے جتنے پاس, ان کی بھی آواز بڑی اچھی ہے. اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں پہلے عمار سے اور پھر اس کے بعد اگر وہ ناکام رہے تو وارث بھائی ان کی.
جی بالکل, ہم نے لان گھر میں آ گئے ابھی.
بالکل آ گئے, کیجیے سوال.
ہیلو,
کہاں چلے گئے؟ دیکھیے ہم لوگ تینوں تیاروں کے بیٹھ گئے آپ کے سوال کے لیے. یاز صاحب اسلام آباد سے چونکہ کال تھی, مے بی وہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی. تو رند صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, معذرت چاہتی ہوں یاز صاحب, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم بالکل تیار تھے. ہمارا تو بلکہ ہمارا تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ جواب دیتا ہوں.
کالز آ رہی ہیں ابھی, وہ جس کی بھی قسمت ہے وہ اس کی کال,
جس کی بھی قسمت ہے. جی رند صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ذوالفقارین بلوچوں سسٹر سعدیہ اسد, اپنے معزز مہمان کو ہم ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں. تو وہ جو بچے کا گانا آپ نے سنایا نا, بہت اچھا لگا ہے.
بچہ ٹھیک ٹھاک بڑا ہے, ہم تو ایسے ہی اس کو کہہ رہے ہیں. تو بچہ ماشاء اللہ یہاں سے پڑھ لکھ کے واپس پاکستان جا رہا ہے.
مزے کی بات یہ ہے کہ
بڑی قدر کرتا ہوں. گڈ, اچھا ہے, اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں کرتے ہیں. تو اپنے ملک کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے جو حکومت ہے وہ اچھی ہونی چاہیے.
رن صاحب ایک یہ دیکھ لیں کہ ابھی عمار یہاں پہ پڑا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں لیکن ایک دن بھی اپنے ملک کو بھولا نہیں ہے اور یہ واپس جانا چاہتا ہے پڑھ کے, پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے اور یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. جو
کیونکہ ظاہر ہے آپ پیرنٹس تو کبھی بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں بیٹا چلو ہی چلو. آج کا نوجوان تو آپ کو پتا ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں, تو اگر وہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی جانا چاہتا ہے. یہ بہت زبردست بات ہے. تو عمار گانا سنائیے اب سید نور صاحب کی فلم کے لیے, جو بھی آپ نے گیت گایا ہے وہ آپ کو لانچ کر رہے ہیں. تو ہم اس سے پہلے کہ سید نور صاحب کی فلم ریلیز ہو ہم گانا سنواتے ہیں.
مووی ریلیز ہو چکی ہے.
ہو چکی ہے, اچھا زبردست.
میوزک ڈیڈ ویری گڈ, کافی اچھا میوزک تھا اس کا. اور ہماری ایکچولی یہاں کی واشنگٹن کی ہیروئن ہے سہرش خان.
اچھا سہرش خان ہے,
وہ اسی ہیروئن تھی. شہروز سبزواری اس کے ہیرو تھے. تو اس کا گانا جو ٹائٹل ٹریک تھا وہ میں نے گایا.
تو بلکہ آپ ملتے جلتے ہی ہیں شہروز سے, تو آپ خود ہی آ جاتے.
بہت لوگوں نے کہا اس کو کہ یو آر بیٹر دین
سید نور صاحب. کی پہلی چوائس یہ تھی مگر ان کو لگا کہ میں سہرش سے کافی چھوٹا لگوں گا, تو انہوں نے پھر پاس کر دیا.
ویسے بات سچ ہے.
تو میں آپ کو اس کا ٹائٹل ٹریک سناتا ہوں.
بالکل ضرور سنوائیے پلیز.
چاہوں اس قدر میں تجھے
पल भर चैन आए ना मुझे, मुझको बचा ले तू, जीऊं जो तेरे बिन जीऊं मर जाऊं मैं, जीऊं जो तेरे बिन जीऊं मर जाऊं मैं।
चार चांद लगे, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो नूरबख्श साहब हमारे कॉलर, तीसरी दफा कॉल की, लगता है वो कोई बहुत ही आपके फैन है। जी नूरबख्श साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?
नूरबख्श साहब किसी को कॉल करने नहीं दे रहे हमें।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूची कुछ अपने स्टेशन में शामिल करें ताकि मैं बाजी सुन लूं आपकी जुबान पे बलूची।
बिल्कुल, देखिए मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ ऐसे एल्बम्स जो हैं वो नाम लिख के मुझे भेजें, तो हमारी लाइब्रेरी वाले मंगवा देंगे मुझे। तो आप प्लीज बताइएगा कोई जो बेस्ट वहाँ का ऐसा म्यूजिक हो। जी
जी
प्लीज, और हमारे चार्ट बस्टर्स के फेसबुक पेज जो है उस पर बताइए।
फैज मोहम्मद का या आरिफ बलूच का या कोई और का तो आप सुनाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो आपका बहुत ममनून हूँ और बहुत कालक भी हूँ।
मैं जरूर नूरबख्श आपकी फरमाइश मैं इनको आगे आज जरूर कह के जाऊंगा कि इनके लिए भी कोई अच्छे
क्या
गाने।
बात है, जबरदस्त,
तो पूरे पाकिस्तान के लिए है ना ये वॉइस ऑफ अमेरिका।
बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बाहर भी हमें सुना जाता है, भारत में हमें सुना जाता है और भी कई जगहों पर, बल्कि यूएई से हमारे एक लिसनर है तो वो कहते हैं कि मैं तो जब आपका प्रोग्राम होता है तो चूंकि गाड़ी में आता है उस रेडियो पे, तो वहां आ जाता हूँ और गाड़ी में बैठ के पूरा घंटा सुनता हूँ। तो इतने डेडिकेटेड लिसनर्स भी हैं। तो मेहर खालिद है इस वक्त हमारे लास्ट कॉलर, ठीक है, टाइम हो गया जाने का। जी मेहर खालिद साहब, हेलो।
हाँ सिस्टर, मार सिस्टर, दोनों बाप बेटा से मिले तो कैसे और उनको सलाम पहुंचेगा सरायकी में, अगर कोई गीत थोड़ा सा सुना दे तो।
सरायकी में गीत सुनाइए जी, जाने से पहले अब आखिरी ख्वाहिश है।
मुझे आती नहीं
पंजाबी, वो मिलती जुलती है उसको मैं सरायकी की कह देती हूँ, ठीक है, पंजाबी का।
वो मेरा एक गाना था इंडिया में भी कॉपी हुआ, अपना छल्ला, सुनीति चौहान,
छल्ला बिल्कुल सुनाइए,
सुनीति चौहान ने गाया था।
अच्छा,
हाँ जी, जबरदस्त, सुनीति चौहान ने गाया था, वो इस तरह था, मोड़ दे निशानी साड़ी छल्ला,
थोड़ा थोड़ा सा माइक्रोफोन के पास,
वहाँ कहते अखियां ना मार मेरे यार मुंडिया, मैं तेनु करनी आ प्यार मुंडिया, मेरे दिल से ओ दीवाने नहीं खेलना। ये मेरा गाना था, मेरा गाना था, खोया रहा मैं तेरी यादों में, जागा मैं तेरे लिए रातों में, पर तू ना फड़ाया सानू पल्ला, हाय पल्ला नी सोनिए, मोड़ दे निशानी साड़ी छल्ला, नी सोनिए, मोड़ दे निशानी साड़ी छल्ला, नी सोनिए, मोड़ दे निशानी साड़ी छल्ला।
बहुत अच्छा गीत है, हम अपने लिसनर्स को आखिर में यही गीत सुनवाएंगे। और वारिस, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, पता ही नहीं चला आपके साथ बातों का, तो बहुत शुक्रिया आप आए।
मैं सोच बिल्कुल जल्दी से,
सीरियसली अमार बहुत शुक्रिया, और हम आपको विश करते हैं कि आपके सामने एक अच्छा मुस्तकबिल हो और आसानियां पैदा हो आपके लिए। तो वारिस थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। इसके साथ ही सादिया असद को, वारिस बेग को, अमार बेग को, अंजुम हैरल गिल को इजाजत दीजिए, और ये अच्छा सा गीत जो भी आपने सुना था वो आपको सुनाते हैं। बिल्कुल,
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. آج ہم ایران کے خلاف امریکی تعزیرات کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے جو حال ہی میں نافذ العمل ہو گئی ہیں. تعزیرات میں ایران کی موٹر سازی سے متعلق صنعت، امریکی ڈالر کو خریدنے کے لیے اس کی صلاحیت اور سونے میں کی جانے والی تجارت کو نشانہ بنایا گیا ہے. نئی امریکی تعزیرات پر یورپی یونین، روس اور چین اور ساتھ ہی عراق نے بھی وسیع تر تنقید کی ہے. تاہم ایران کے پڑوسی ملکوں سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے بیشتر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، گرچہ وہ تہران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بظاہر محاذرائی پر مبنی طرز عمل کی حمایت کرتے رہے ہیں. یہاں واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العتیبہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایران کو اس کا احساس دلایا جائے کہ اس کی کارروائیوں کے لیے اسے نتائج بھگتنے پڑیں گے. العتیبہ نے مزید کہا کہ بقول ان کے، علاقے میں ایران کے گماشتے تہران کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایران کے علاقائی عزائم اور اہداف کو آگے بڑھا رہے ہیں. واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے لیے فاتحہ بلفقیر اور مہدی جیدینیا نے اپنی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ سعودی عرب اور خلیج میں اس کے اتحادیوں کی متعدد عشروں سے ایران کے ساتھ رقابت رہی ہے، جس کے نتیجے میں عراق، شام، لبنان اور یمن میں تصادم کو ہوا ملی ہے. گزشتہ مہینے ہی سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ایران کی جانب سے بقول ان کے، علاقے میں فرقہ وارانہ تشدد اور دہشت گردی کی حمایت پر تشویش کا اظہار کیا تھا. انہوں نے بیجنگ میں چین اور عرب تعاون کے فورم کے ایک اجلاس کے موقع پر بھی کہا تھا کہ ایران سرگرمی کے ساتھ عرب ملکوں کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. امریکہ نے بحرین میں قائم الاشتر بریگیڈ کو ایک عالمی دہشت گرد تنظیم کا درجہ دیا تو بحرین نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور علاقے میں مبینہ طور پر ایران کی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد گروپوں کا قلع قمع کرنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کی حمایت کا عہد کیا. تاہم ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے اور علاقے میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے گزشتہ ہفتے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ان کا ملک علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. بعض ایرانی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش واشنگٹن میں خلیج کی ریاستوں کی جانب سے زبردست لابی کا براہ راست نتیجہ ہے. علاقے پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق مشرق وسطی کے جاری تنازعات میں علاقے کے ملکوں کے مخاصمانہ اور فرقہ وارانہ طرز عمل اور ایک دوسرے پر اقتصادی، فوجی اور علاقائی بالادستی حاصل کرنے کی کوششوں کا بڑا عمل دخل ہے اور اس کا حل فروعی اختلافات سے اجتناب کرتے ہوئے سنجیدہ مکالمے، دور اندیشی اور افہام و تفہیم میں ہی مضمر ہے. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے؟ رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں